جم و صلاتی، نمازیں جمع کرنے کے مسائل، یعنی کن حالات میں لوگ نماز جمع کر سکتے ہیں اور کس میں نہیں کر سکتے. بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. ان نافع عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کان اذا جمع ال امراء بین المغرب والعشاء فی المطر جمع معهم. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حکام کے ساتھ مل کر مغرب اور عشاء کی نماز بارش کی وجہ سے جمع کر لیتے تھے. اسے مالک نے روایت کیا. تو اس میں آج ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ کبھی ایسا ویدر ہو کہ جس کو لوگ خراب ویدر کہتے ہیں، حالانکہ ویدر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، یعنی راستوں کے بند ہونے کا ڈر ہے یا مشکل ہے، تو بارش ایسی یا کوئی ایسے حالات ہو سکتے ہیں بارش پہ قیاس کرتے ہوئے، آندھی طوفان، کہ جس میں مسجد میں جانا فتنے کا سبب ہو سکتا ہے یا حادثات کا ذریعہ بن سکتا ہے یا کوئی اور مشقت، تو اس صورت میں پھر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور وہی دو نمازیں جو کہ سفر میں جمع تقدیم اور تاخیر کی صورت میں ملائی جا سکتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. یہاں خاص طور پہ جو لفظ ہے وہ مغرب اور عشاء کا ہے، تو کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اندھیرے کا ڈر ہے. یہ جو پہلی بات میں نے کہی اس کو نکال دیں، صرف مغرب اور عشاء کے لیے یہ بات ہمیں یہاں مل رہی ہے، تو اس میں غالباً یہ امکان ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے عشاء میں آنا مشکل ہو. اور ذہن میں رکھیے کہ جس دور میں مسجد نبوی کچی تھی، سڑکیں راستے اس طرح کے خوبصورت نہیں تھے، تو بہرحال پھر جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو اس وقت پھر مغرب کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایام جاہلیت کی فوت شدہ نمازیں حاضر نمازوں کے ساتھ جمع کرنا، جسے قضا عمری کہتے ہیں، ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. دوران سفر دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. دو نمازیں جمع کرنے کے لیے اذان ایک مرتبہ، لیکن اقامت الگ الگ کہنا ضروری ہے. دوران سفر جمع نمازیں قصر کر کے ادا کرنی چاہیے. دوران حضر میں جمع نمازیں پوری پڑھنی چاہیے. اب ساری باتوں کو جمع کر لیں تو حدیث کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیا جمیعا وسبعا جمیعا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں جمع کیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس ایک حدیث میں دیکھیے کتنی باتیں ہیں نا. پہلے تو نمازوں کا جمع کرنا مل گیا، پھر صرف فرض پڑھے اور فرض پورے پڑھے، یعنی 4 فرض ظہر کے ہیں تو 4 عصر کے ہیں تو ملا کے دونوں 8 پڑھے، پھر مغرب اور عشاء کی 3 اور 4 کے حساب سے 7 رکعتیں پڑھیں. تو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جب قضا کی جاتی ہے تو پھر نماز بھی مختصر کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، کسی وجہ سے اگر آپ دو نمازیں اکٹھی کر رہے ہیں جو آپ کی حضر کی کیفیت ہے، جو آج کل عموماً ہماری ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر پوری پڑھی جائے گی. لیکن سفر کے دوران جب دو نمازیں جمع کی جائیں گی تو قصر پڑھی جائیں گی. پھر یہاں قضا عمری کی بات ہوئی تو یہ وہ موضوع ہے جو عموماً ہمارے کلچر میں مس انڈرسٹوڈ ہے. نماز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یعنی قضا نمازوں کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے اوپر جائیں تو قضا نماز ہونی نہیں چاہیے. ایک مسلمان نماز کو قضا نہیں کرتا، ہاں نماز قضا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی بھی ریزن اس کی ہو سکتی ہے. لیکن قضا نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قضا ہوئی ہے، خدا نخواستہ سوتے رہ گئے فجر قضا ہو گئی، سوتے رہ گئے کسی وجہ سے بیمار تھے اٹھے تو مغرب کی نماز کا وقت چلا گیا. اس صورت میں کیا حکم ہے؟ قضا عمری کریں گے. کس طرح کریں گے؟ پوری عمر کو جمع نہیں کریں گے، فوراً پڑھیں گے، جتنی جلدی ممکن ہوا اگلی نماز سے پہلے آپ اس نماز کو ادا کریں گے. کسی وجہ سے اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے کہ بھائی اچھا ابھی نہیں کرتے، ابھی بعد میں پڑھ لیں گے، اس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے. دوسری وہ نمازیں ہیں کہ جو انسان پچھلی زندگی میں کبھی پڑھتا تھا اور کبھی نہیں پڑھتا تھا، आदत नहीं थी, ख्याल नहीं था, इस नेमत की कदर नहीं थी। अब पता नहीं कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ी, अब अल्लाह ने तौफीक दी, हिदायत मिली किताब से और कुरान से जुड़े, तो अब कहा कि नहीं अब कोई नमाज़ नहीं छोड़नी। अब पिछली ज़िंदगी में कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए ये कि सबसे पहले दिल में शर्मिंदगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए कि अल्लाह ताला तू मेरे पिछले को माफ़ कर दे, और आइंदा कभी भी नमाज़ ना छोड़ने का इरादा और नीयत की जाए। अब कोई नमाज़ नहीं छूटेगी। फिर कसरत से नफिल अदा किए जा सकते हैं, आम तौर पे भी नफिल, यानी जब तहज्जुद की नमाज़ है या इशराक की है, चाश्त की है, जब मौका मिले नफिल पढ़ें, और इस उम्मीद पे कि अल्लाह ताला आपकी कमी को पूरा करे, और उसके बाद फिर मुतमईन हो जाएं। हमारे यहाँ जो पिछली ज़िंदगी की नमाज़ों को जमा करके फिर उनको रमज़ान के ग़ालिबन महीने में आखिरी जुमे को अदा करना, या हज और उमरे पे गए हैं तो वहाँ एक एक नमाज को एक एक लाख के साथ क्यास करके वे पढ़ना, दीन इतनी जमा तफरीक नहीं सिखाता। देखिए दीन इस्लाम इतना आसान दीन है, इतना सीधा दीन है कि अगर हम इसको लोगों के सामने उसी शक्ल में पेश करें जो इसकी असल शक्ल है, तो जिस तरह लोगों को हवा और पानी को लेने में कोई मुश्किल नहीं होती ना, इस तरह लोगों को ये दीन कबूल करने में भी मुश्किल नहीं होगी। मसला कहाँ बिगड़ता है? जब हम इसको बहुत पेचीदा करके, मैथमेटिकल करके, और इसको इस तरीके का हम बना के पेश करते हैं, कैसे लगता है कि पढ़े लिखे लोग ही करेंगे। किसी को जमा तफरीक आती नहीं, वो कैसे याद करेगा पिछली ज़िंदगी की बातें, कब उसको कितने से ज़रब देगा, कितनों के जमा करेगा, फिर जब पढ़ चुका है तो उसका हिसाब किताब कहाँ लिखेगा। अल्लाह के नबी ने बहुत ही आसान दीन दिया, तो लिहाजा ऐसी सूरत में तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। इमाम इब्ने तैमिया इस बारे में कहते हैं कि अगर एक मुशरिक तौबा करता है तो उसकी पिछली सारी गुनाह, पिछली सारी नमाज़ें, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और वो तौबा उसके लिए रहमत बन जाती है। मसलन अगर 20 साल की उम्र में कोई शख्स मुसलमान हुआ, 10 साल की उम्र से लेके अगले 10 साल की नमाज़ें उसने नहीं पढ़ी, लेकिन वो सब माफ़ी की सूरत में हुई और अब से उसको पढ़नी है। लेकिन कहते हैं कि जब एक मुसलमान तौबा करता है, मिसाल है 20 साल की उम्र में ही कोई पक्का नमाजी होता है, तो इसकी तौबा उसके लिए ज़हमत क्यों बने? यानी अगर इसको कहा जाए कि पिछले 10 साल की नमाज़ों को 365, फिर 365 को 5 के साथ ज़रब दो, कई हज़ार नमाज़ें हो गई हैं, ये साथ पढ़ो फिर अगली पढ़ो, तो आप देखिए कि उसके लिए तो ज़हमत हुई। फिर दूसरी बात देखिए कि जो वैसे ही नया नया शुरू करने वाला है, उसके ऊपर पिछली भी नमाज़ों का बोझ होगा, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। हमारा दीन तदरीज सिखाता है ना, सहूलत के साथ, बच्चे हैं तो नमाज़ पढ़ें तो सिर्फ फ़र्ज़ों पे उसको लेके आएँ, आहिस्ता आहिस्ता उनको यूज़ टू करें। लेकिन जब एक तायब को आप पिछली नमाज़ें भी पढ़ने का हुक्म देंगे, तो उसकी वजह से फिर वो बार बार तौबा करके बार बार तोड़ेगा। तो वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो पिछली खताएँ अपनी रहमत से माफ़ कर दे। क्या हम पिछले गुनाहों को मेकअप करते हैं जो हमने किए, या क्या पिछली ऐसी चीज़ें जिनको हमने गुनाहों की सूरत में किया कि आप उसको लेके अरेज़र लेके बैठते हैं? अल्लाह के ख़जानों पे नज़र रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। कोई सवाल इस मौजू से मुतल्लिक हो तो आप पूछ सकते हैं। दिन का सवाल ये है कि अगर सोते रहने की वजह से फजर कज़ा हो गई, मिसाल देती हूँ कि कोई पर्सन है वो महसूस करता है कि मैं पिछले एक महीने में एक भी दिन फजर के लिए नहीं उठा, फर्स्ट थिंग आइडियल सिचुएशन क्या थी, जो ही उठा वो पढ़ता, लेकिन नहीं पढ़ी। अब आपने आज ये मसला सुना कि नमाज़ तो पढ़नी है, लाजिम है, आप कहते हैं मैंने पिछले पूरे महीने की नहीं पढ़ी, कभी पढ़ती नहीं, और आपको डेफिनेट है कि फजर की आप नहीं पढ़ते थे, फिर आप पढ़ेंगे। हर वो नमाज़, यानी एक कुलिया याद रख लें, हर वो नमाज जिसका आपको श्योर है कि आपने नहीं पढ़ी भी, मिसाल है आज मैंने फजर नहीं पढ़ी या कल मेरी जोहर छुट्टी थी, अब आपने आज ये मसला सुन लिया, बाइंदा तो ये नहीं करना कि उसको बाद डिले करें, लेकिन अब आपको अगर श्योर शॉट है कि आपकी ये दिन की इस वक्त की ये नमाज़ छुट्टी हुई है, तो फिर उस दिन की नियत से पढ़ेंगे आप। जिस चीज़ का पता और जिसका नहीं पता, फिर उसको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। जी देखिए कि जो ऐसी कज़ा नमाज़ें उसके लिए डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपनी कोई दूसरी मसरूफियात छोड़ें, वज़ाइफ़ छोड़ें, कोई आप दीन के नाम पे इस तरह का काम करते हैं जो सिर्फ आपकी इबादत के साथ ताल्लुक़ रखता है, उसकी बजाय फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करें। लेकिन जो बाकी रहेगी बात के, जो नमाज़ की सुन्नतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते, तो उसका अहतमाम आप करेंगे, अपनी दूसरी चीज़ों में वक्त निकालें। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अब वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो आप कुरान की क्लास में आना छोड़ दें कि भाई मैं तो ये काम कर रही हूँ, ऐसा ना करें। मेरा ख्याल है कि जब बंदे को एहसास शुरू होता है तो फिर वो पिछली ज़िंदगी की चीज़ों पे जो शर्मसार है, अल्लाह ताला उसके लिए ख़ुद ही आसानियाँ कर देते हैं, और पूरी तवज्जो के साथ, शर्मिंदगी के साथ जितनी जल्दी मुमकिन हो उसको पढ़ लें, लेकिन किसी एक नेकी की कीमत पे दूसरी नेकी ना करें। जी आप जी, इनका सवाल ये है कि किसी नमाज का वक्त शुरू हो चुका था लेकिन ये सोच रख के कि अभी नहीं, थोड़ी देर में पढ़ते हैं, डिले किया और इतने में पीरियड्स आ गए, अब क्या किया जाएगा? जब पीरियड से फारिग होंगे तो उस नमाज को अदा करेंगे। ठीक है। जिनका सवाल है कि बच्चे स्कूल में होते हैं, जोहर का वक्त आ जाता है और वो नहीं पढ़ पाते, घर आने तक असर का वक्त हो जाता है जी, तो क्या होगा इस सूरत में, क्या नहीं पढ़ेंगे? आप देखिए कि मैं अपने आप को सामने रख के ये बात कहती हूँ कि अगर मेरी नज़र में दीन और मेरी नमाज और मेरा इस्लाम क्लियर होगा ना, मैं किसी चीज़ को उस वक्त में कबूल नहीं करूँगी। मैं स्कूल में जाती हूँ, मेरी नमाज का वक्त है, वहाँ मैथमेटिक्स का पेपर है, वट्स एवर है, जो भी मिसाल है, अल्लाह ने नमाज़ों के वक्त में जितनी वसत रखी है ना, उसमें ये सहूलत है कि कोई बात नहीं, अगर एक काम कर रहे हो तो दूसरा कर लो। लेकिन अब सर्दियों में चूंकि यहाँ दिन छोटे हैं और मिसाल है कि 1.5-2 घंटे ही जोहर का वक्त रहता है, उसके बाद असर का वक्त होता है, किसी भी बालिग लड़के और लड़की को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो उस वक्त में स्कूल वालों से ये कह कर के जी ठीक है अब मेरा तो स्कूल है और मैं नहीं कर सकता और दिस एंड दैट, नहीं, उनको वहाँ इजाज़त लेनी पड़ेगी। देखिए, जब हमें यकीन होता है ना कि हमारे लिए ये लाजिम है तो कोई नहीं रोकता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप इस वक्त मेरे साथ एक क्लासरूम में बैठे हैं, आप सबके लिए यहाँ से बेजा हरकत करना, उठना बिल्कुल मना है, पसंदीदा भी नहीं है, आप उठते हैं तो सबको मसला होता है, लेकिन बिलफर्ज अगर आप में से किसी को टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़े, आप जाते हैं ना, कोई रोक सकता है या आपको कोई मना करेगा? और आप पूरा जब्त करेंगे लेकिन इसके बावजूद आपको महसूस होगा कि फितने का डर है, आप जाएंगे ना? हमने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया ना कि इस वक्त अगर इस बंदे को टॉयलेट जाने से रोका तो ये हमारे लिए भी फितने का सबब होगा, दूसरों के लिए भी। तो जिस तरह टॉयलेट जाने की ज़रूरत को हर बंदा, हर मज़हब का बंदा रियलाइज़ कर चुका है, अगर हम मुसलमान अपने दीन के साथ स्टिक हों, जहाँ लोग मुसलमान का नाम देखेंगे वो हमसे पहले जान जाएंगे कि इस क्लास के दौरान इनकी फ़लाँ नमाज का वक्त आना है, कभी नहीं रोकेंगे। आप कहें कि मेरी ज़िम्मेदारी है, वो सबक का हिस्सा मैं मेकअप करूँगा, इसके लिए उस वक़्त फितना खड़ा करने की बजाय हम पहले से बात कर सकते हैं, और ये नहीं हो सकता कि कोई आपको रोके। मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, जिस तरह आपको टॉयलेट जाने से कोई नहीं रोक सकता जी। लेकिन मसला कहाँ बिगड़ता है कि ये तो स्कूल में नमाज आई ना, जब हम बाकी नहीं वक्त पे पढ़ते तो ये इसके लिए कौन इख्तमाम करेगा? मिसाल है कि बाकी नमाजें हमारी डिलेइंग है या हैं ही नहीं, और कभी हैं और कभी नहीं है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? फिर हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, जब भी जो बात होगी कर लेंगे, या ये कौन सी बड़ी बात है? यानी हो सकता है मेरी ये बात जो मैंने अभी कही कि स्कूल के अंदर से भी आपको उठना पड़ेगा, जॉब से भी उठना पड़ेगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो टू मच बात है। तो ये टू मच अगर लग रही है तो फिर हम समझ सकते हैं कि अभी हमने नमाज की वो अहमियत नहीं समझी। ठीक है, तो इसके लिए शुरू से कोशिश करें, स्कूलों में जब बच्चों का एडमिशन कराएं उनको बता दें कि ये हमारी मजबूरी है, हमारा बच्चा है, हम इसको नमाज के लिए देंगे 5 मिनट के लिए, लाख उठ के चला जाए, वो उस वक्त का लेसन और अच्छा याद करे। अगर उस वक्त कोई ऐसा मामला था जो बाद में मेकअप करना मुमकिन नहीं है, उसका कोई मुमकिन तरीका रखे ताकि लोग इस चीज़ की कदर करें, और यकीन करें कि हमारे इबादत करने से लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। लोगों को मसला होता है तो हमारा दीन पे अमल से मुश्किल होती है, नमाज़ों से कोई कुछ हमें नहीं कहता जी। आप तला से दुआ है कि हमें नमाज़ों की कदर करने वाला बना दे, इसको प्रायोरिटाइज़ करें। अगर आप एक नमाज़ बच्चे को स्कूल वाली अहम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पिछली बाकी 4 नमाज़ों पे उसको इतना पक्का करें, वो आपको घर में उठते हुए देखे, बच्चों को पता चल जाए कि एकदम माँ और बाप बेचैन हो जाते हैं, हो क्या गया, नमाज़ का वक्त हो गया। जैसे फिर वही बात कहूँगी कि टॉयलेट में जाना होता है तो इंसान उससे पहले ही बेचैन होना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर रोकता है, जब्त करता है, अच्छा अभी। ये कैफियत जब नमाज के वक्त से पहले हमारी होने लगेगी, इंशाल्लाह ताला फिर कोई दुनिया की ताकत हमें इससे नहीं रोक सकती, और हर वो चीज़ जो इस रास्ते में रुकावट बनती है फिर इंसान उसको मैनेज कर सकता है। अल्लाह ताला कहते हैं वमई यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ज़रूर उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएगा, अल्लाह उसके मामले को आसान कर देगा। और अगर हम कह नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब कि हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला खुद ही बंदे के लिए आसानियाँ नहीं चाहता। ठीक है।